ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिणेन म्यूं वेयण महाहियारं विविहियारं परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ग्यारहवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना काल विधान अनियोग द्वार चल रहा अपना। अभी हम पृष्ठ संख्या 108 पर आ गए हैं। इसमें हमने ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट स्थान देखने के बाद अनुत्कृष्ट स्थानों की बात देखी थी। अब यहाँ नीचे से दूसरा पैराग्राफ वहां से पढ़ते हैं। कल हमने विस्तार से देखा था ना कौन कौन से स्थान होते, संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव में पहले घटाया, फिर उसके बाद एकेंद्रियों में घटाए, उसके बाद उसके नीचे क्षपक श्रेणी में घटाए। क्षपक श्रेणी में तो निरंतर और शांतर ऐसे स्थान हमने देखे। अब यहाँ कहते हैं जो जीव इन स्थानों के स्वामी है उनकी छह अनुयोग द्वारों के द्वारा प्ररूपणा करते हैं। इन जो स्थान अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट जगह ने जो कुछ बताए, उनके जो स्वामी जीव है उनकी यहाँ प्ररूपणा करेंगे, उसमें छह प्रकार से उसका वर्णन करेंगे। यथा यहाँ पहले त्रस जीवों का आश्रय करके प्ररूपणा करने पर जघन्य स्थान में जीव हैं, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थान तक ले जाना चाहिए, यानी हर एक स्थान में जीव है इतना बताएंगे। इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई, उसके बाद वो प्रमाण बताएंगे। ओघ जघन्य स्थान में जघन्य से एक और उत्कर्ष से 108 जीव पाए जाते हैं। ओग जघन्य स्थान यानी जघन्य स्थान किसके हैं, ज्ञानावरण की बात चल रही है, काल की अपेक्षा जघन्य यानी एक समय अंतिम निशे कब होगा, 12वें के अंत में, दसवें में तो बंद है ना, वहां अभी सत्ता में पड़ा है निशेक, तो अंतिम निशेक तो क्षीण कषाय का अंतिम समय। हाँ, तो उसमें हमने देखे थे कितने, कम से कम एक जीव और अधिक से अधिक 108 जीव। जैसे अयोगी में जो सिद्ध होते हैं उसमें भी ऐसा ही प्रोपोर्शन हमने देखा था, वैसे यहाँ भी समझना, जीवों का प्रमाण तो वैसा ही है उसमें भी। इस प्रकार क्षपक श्रेणी में प्राप्त सभी एक समय वाला है ना, तो अंतिम समय, तो क्षपक श्रेणी में या हम देखते हैं अयोगी में से 14वें में से सिद्ध होने वाले जीव, कम से कम एक जीव और अधिक से अधिक 108 जीव। जैसे वहां जीवों का प्रमाण है वही प्रोपोर्शन जीवों का क्षपक श्रेणी में भी है। हम यहाँ तो क्षपक श्रेणी के 12वें गुणस्थान की ही बात कर रहे हैं अंतिम समय की, तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में कम से कम एक जीव होगा, अधिक से अधिक एक समय की बात है, अंतिम समय की बात है, 108 जीव है। पूरे 12वें गुणस्थान में कितने जीव होते हैं उसकी बात नहीं है, वो तो अंतर्मूर्त है तो उसमें बहुत सारे जीव हो गए, ये बात एक समय की बात है, अंतिम समय वाले की बात है। हाँ, यानी 12वें के अंत में एक समय वाला ज्ञानावरण की वेदना है, उसमें उसके स्वामी कितने हैं एक ही समय में, कम से कम एक जीव, अधिक से अधिक 108 जीव। इस प्रकार मिनिमम तो जो अंतिम समय में वो सबका मिनिमम है, वहां जीवों का प्रमाण बता रहे अभी स्वामी तो बता दिए, अब उसमें जीवों का प्रमाण कितना है। क्षपक श्रेणी में कम एक समय में कितने जीव होते हैं, कम से कम एक जीव और अधिक से अधिक 108 जीव। इस प्रकार क्षपक श्रेणी में प्राप्त सभी स्थानों में जीवों का प्रमाण कहना चाहिए, सभी स्थानों में ऐसा ही उसका प्रमाण होगा। अब ये तो जघन्य स्थान की बात बता दिए, जघन्य स्थान में जीवों का प्रमाण बताया। अब कहते संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति में, ये जो पहले बात आई थी ना ध्रुव स्थिति तक ले चले थे, नीचे नीचे आए थे हम, तो वो संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि में जो जघन्य स्थिति पॉसिबल है, ये जो एकेंद्रिय से भी नीचे के स्थान देखे हमने वो तो क्षपक श्रेणी वालों के देखे, परंतु संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो मिनिमम पॉसिबल वहां जो कुछ है वहां जघन्य स्थिति में जीव प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण, वहां जीवों की संख्या प्रतर के असंख्यातवे भाग है। पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय लिया है ना यहाँ, हाँ चारों गति सबको मिलकर, क्योंकि अभी यहाँ कोई उनसे गति है उसकी विवक्षा नहीं है। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जघन्य स्थिति की बात है। द्वितीय स्थिति में भी वे प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, जघन्य से दूसरा नंबर की स्थिति पर, वो भी पल्ले के असंख्यातवे भाग। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिए, हर एक स्थिति वाले जो जीव है वो कितने हैं, तो पल्ले के असंख्य सॉरी प्रतर के असंख्यातवे भाग। श्रेणी प्ररूपणा दो प्रकार है, ये दो छह अनुयोग द्वार है, उसमें प्ररूपणा देखी, प्रमाण देखा, अब श्रेणी प्ररूपणा करेंगे। उसमें अनंतरोपनिधा और परम्परोपनिधा, अनंतरोपनिधा और परम्परोपनिधा, उनमें अनंतरोपनिधा की अपेक्षा अनंतर उपनिधा यानी एक के बाद जो स्थान है उसकी बात है, और परंपरा उपनिधा में एकदम कुछ गैप की बात यानी विशिष्ट अंतर के बाद वो कितना प्रपोर्शन होता है उसको कहते हैं। तो अनंतरोपनिधा की अपेक्षा सातावेदिनी के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव तथा असातावेदिनी के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणीय की अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति देख रहे हैं, और ऐसे जीव जो साता का बंद कर रहे हैं और असाता का बंद कर रहे हैं, उसमें दो बातें ली है। तो ये चतुस्थान कौन से होते हैं मालूम है आपके, साता के चतुस्थान, हाँ नहीं नहीं हाँ आपके, हाँ साता वेदिनी में गुड़ खांड शर्करा और अमृत, ये जो अनुभाग के चार प्रकार है, अनुभाग के हमने देखे थे। देखो जो सभी कर्म है घाती है और अघाती है, घाती कर्मों के अनुभाग की अपेक्षा हम चार कौन से कहते हैं, हाँ लता, नीचे की ऊपर की ओर मंद से तीव्रता की ओर अगर देखेंगे, लता दारू काष्ट और शैल, लास्ट में कास्ट और शैल, अस्थि अस्थि, दारू का ही अर्थ है कास्ट है, लता दारू अस्थि और शैल, ये तो चार प्रकार। अभी अघाती की बात करेंगे, अघाती में शुभ प्रकृति और अशुभ है, साता आदि और असाता आदि। तो साता आदि में कौन कौन से चार स्थान है, मंदता से तीव्रता की ओर देखेंगे तो गुड़ खांड शर्करा और अमृत, और असाता आदि जो अप्रशस्त प्रकृति है उनके जो चार स्थान है नीम कांजीर विष और हलाहल। तो ये कौन सा साता का चतुस्थान बंधक और त्रिस्थान बंधक। जब चतुस्थान बंधक करेंगे तो सभी चार गुड़ खांड शर्करा अमृत, और त्रिस्थान इन्हें कौन सा ऊपर वाला छोड़ना, नीचे के अमृत हाँ छोड़कर नीचे के तीन स्थान का बंधन करने वाला उसको तीन त्रिस्थान बंधक कहेंगे। और असाता वेदनी में द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक, हमने देखा था जब विशुद्धि बढ़ती है तो द्विस्थान बंधक हो जाते हैं, यानी नीम और कांजीर इतना ही बांधेंगे, विष हलहल वाले असाता के अनुभाग नहीं बंधेगा, कम अनुभाग। देखो यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञानावरणी की जघन्य स्थिति बन रही है, तो जहां स्थिति और अनुभाग दोनों काहे से बनते हैं, जघन्य स्थिति बनती है उसका अर्थ क्या है, वहां परिणाम विशुद्ध है। वो सम्यक दृष्टि वाले ऊपर के श्रेणी वाले विशुद्ध वो नहीं समझना, मिथ्या दृष्टि को भी विशुद्ध परिणाम होगे। तो जब ज्ञानावरण बन रहा है, कम स्थिति वाला बन रहा है, तो वहां नेचुरली साता का अधिक बंध है, अधिक यानी वो चारों स्थान वाले या तीन स्थान वाले, और असाता में कम वाला होगा, दो स्थान वाले या तीन स्थान वाले। देखो वहां पर साता वेदनी के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव तथा असाता वेदनी के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणी की अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है, यानी ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति में जीवों का प्रमाण कम है, और वहां साता आदनी असाता का क्या प्रपोर्शन है उसको भी बताया, वे जीव कम है। द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है, यानी ज्ञानावरण की द्वितीय स्थिति में जीवों की संख्या अधिक है, तो उसमें वो साता असाता के भाषा में उन्होंने बता दिया उसको कितने प्रमाण से अधिक है। तो कहते हैं पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग से खंडित करने पर उसमें से वे एक यव मध्य तक विशेष अधिक होते गए हैं। एक यव मध्य क्यों लिखा, यव मध्य तक क्यों नहीं लिखा, एवं विशेषाह्या विशेषाह्या जाओ यव मध्यम। एक शब्द नहीं चाहिए बीच में, ऊपर देखो ना, पलिदो वमस्य असंख्य यदि भागेन खंडिद एक खंडमेतेन, उसमें से वे एक ये रह गया, एक खंड मितेन है ना, एक खंड प्रमाण है, तदीयाए ठिदीए जीवे जीवा विशेषाया, ये पूरा एक वाक्य रह गया यहाँ पर, आपके यहाँ पढ़ना चौथे लाइन से पढ़ो अंत में पल्ल्योपम के असंख्यात। नहीं यहाँ भी रह गया है, नहीं नहीं ये पूरी लाइन रह गई, देखो मैं भी पढ़ती हूँ, प्राकृत में है वो पैराग्राफ की चौथी भाग की अंतिम लाइन, पलिदोवमस्य असंख्य यदि भागेन खंडित एक खंड मेत्तेन, वहां कहते हैं कितना है, अभी यहाँ पढ़ती हूँ हिंदी में, पल्ल्योपम के असंख्यात वे भाग से खंडित करने पर उसमें से वे एक खंड प्रमाण या एक भाग प्रमाण, एक खंड प्रमाण लिखेंगे चलेगा, हाँ पूर्ण वाक्य लिखना पड़ेगा, वो रहने दो, एक और यव मध्य के बीच में अभी वाक्य डालना कि वे एक खंड प्रमाण है, ये वाक्य यहाँ पूरा होता है, फिर अभी आगे फुल स्टॉप। तदीयाए ठिदीए जीवा विशेषाहिया, पहले हमने द्वितीय स्थिति में लिखा था ना, वैसे तृतीय स्थिति में जीव विशेष अधिक है। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर दोबारा बोलती हूँ मंजू बहन, 109 पृष्ठ निकालना, ये पहले वाक्य लिख लेना नीचे, और वो कहाँ डालना है उसकी साइन में बाद में बताऊंगी। 109 पेज पर नीचे स्पेस है ना, नीचे फुटनोट जहाँ लिखते हैं वहाँ लिखो, खंड प्रमाण है, एक पूरा वाक्य लिखना है, खंड प्रमाण है, फिर फुल स्टॉप, दंड जिसको कहते हैं। हाँ, अब कहना तृतीय स्थिति में जीव विशेष अधिक है, फिर फुल स्टॉप, दंड। अब कहते एवं इस तरह अभी आगे रुकना, आगे वहां है ऊपर, यवम मध्य तक विशेष अधिक होते गए हैं, ऊपर लिखन एवं विशेषा या विशेष या जाव यव मध्यम, वहां की जाव यव मध्यम वो प्राकृत होने से बाद में लिया है, अब हिंदी का जो वाक्य रचना अलग होती है, इतना ही पूरा डालना था ऊपर। अब ये कहां उसकी साइन लिखनी है बताए उनको, हाँ, एक और यव मध्य के बीच में साइन करना, ये पूरा वाक्य हमने वहां ऐड किया है। हाँ, बाद में मैंने वाक्य बताया ना, तृतीय स्थिति में जीव विशेष अधिक है, इस तरह बस, यहाँ बाकी ऊपर है, एक एवं मध्य नहीं, एक के बाद हमने शुरू किया था नीचे ऐड करना, इस तरह एवं मध्य तक, आगे की बात वहां लिखी है, यानी क्या कहते हैं, नीचे के स्थिति में जघन्य वाले लिए ना, उसमें कम है जीव, ऊपर की स्थिति में अधिक जीव है, 11 वर्णी के जीव जघन्य स्थिति में जीवो, अभी उसी में वो साता वेदने की भी बात बता दी उन्होंने, अभी साता वेदने से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उसके साथ वाले जीव कौन से, उसकी बात की। अब कहते हैं ये जघन्य स्थिति वाले जीव कम है, अब जीवों की अपेक्षा काल की बात है ना, एक स्थिति वाले जीव, दो स्थिति वाले जीव, तीन स्थिति वाले जीव, ऐसे कहते हैं यव मध्य तक, ये जीवों का प्रमाण ज्यादा होगा उसको हम यव मध्य कहेंगे, तो पहले स्थिति में जीवों का प्रमाण कम है, द्वितीय स्थिति में ज्यादा है, तृतीय में और ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो उन्होंने कहा पल्य का असंख्यात विभाग से खंडित करो, उसमें से एक खंड प्रमाण ज्यादा है, यानी असंख्यातवा भाग अधिक है, पहले तो उन्होंने बता दिया कि हर स्थान में जीव असंख्यात है, फिर कहते उससे असंख्यातवा भाग अधिक है, असंख्यातवा भाग अधिक है, असंख्यातवा भाग अधिक है, ये बात यहां बता रहे हैं, ये कहां तक ऐसे विशेष अधिक ये वो मध्य तक, उसके बाद क्या होगा, विशेषहीन विशेषहीन होते चले जाएंगे। अब इसको देखते हैं, यहां पढ़ेंगे आपको ख्याल में आएगा, उसके आगे वे विशेषहीन हैं इस प्रकार, सागरोपम शत पृथक्त्व स्थिति तक वे विशेषहीन विशेषहीन हैं, सागरोपम शत पृथक्त्व, पृथक्त्व यानी कुछ, हाँ, 7-8 ऐसा हम देखते ना, 7-8, हाँ, वैसे पृथक्त्व का अर्थ बिटवीन 3-9 होता है, परंतु कहीं कहीं 7-8 ऐसा भी कहते, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है, यथा योग्य समझना। तो शत पृथक्त्व, सागरोपम शत पृथक्त्व, यानी 700 से 800 सागर इतना लेना, ऐसे स्थिति तक वे विशेषहीन विशेषहीन हैं, जहाँ इतनी स्थिति पाई जाती है, क्योंकि स्थिति के भेद देखे हैं हमने ये सारे। 30 कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर उस उत्कृष्ट से हम उतरते उतरते नीचे आए, अभी हम जघन्य से ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो नीचे जीव कम है, फिर ऊपर अधिक है, अधिक है, अधिक है, यव मध्य तक अधिक है, फिर क्रम से हीन होते गए हैं। ऐसा कहाँ तक? तो जहाँ स्थिति कितनी, सागरोपम शतपृथक पर जितनी स्थिति है, वहाँ तक विशेषहीन का प्रमाण समझना। अब कहते हैं साता, ये तो हमने चतुस्थान त्रिस्थान साता और असाता में द्विस्थान त्रिस्थान देखा था। अब यहाँ कहते हैं साता वेदिनी के द्विस्थान और असाता वेदिनी के चतुस्थान बंधक जीव। अब ये कौन सा थोड़ा ज़्यादा संकलेश वाला लिया ना, और अभी यहाँ ज्ञानावरण की स्थिति भी ज़्यादा बंध रही है, तो वहाँ साता का तो द्विस्थान बंध हो रहा है और असाता का चतुस्थान हो रहा है। ऐसे जीव एक्चुअली उन्होंने ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति में वे जीव ऐसा लिया है। हाँ, वो जीव देखो, जघन्य स्थान में दो अलग अलग ग्रुप किए। एक ग्रुप ऐसा लिया साता वेदनी का चतुस्थान और त्रिस्थान बंद करने वाला, और असाता का द्विस्थान और त्रिस्थान वाला, उसकी बात बता दी, ये क्रम से अधिक होते फिर कम होते। अब दूसरा ग्रुप ऐसा लिया है साता का द्विस्थान और असाता का चतुस्थान बंधक जीव, अब उनका प्रमाण बताएंगे। तो वे ज्ञानावरण की जघन्य स्थिति में स्थोक है, द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है, तृतीय समय में उनसे विशेष अधिक जीव है। अभी स्थिति के बदले यहाँ समय लिखा, ये स्थिति में चाहिए, यहाँ समय में लिखा है। ये तो उन्होंने देखो कहाँ, ये संगी पंचमी मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति में ही वो चल रही बात, क्योंकि प्रतर के असंख्यात भाग है तभी तो उसका असंख्यात भाग बढ़ेगा ना। क्षपक हिरणी की वो बात यहाँ नहीं है, ख्याल है ना? हाँ। और आपने जो बताया मान लेते हैं क्षपक श्रेणी में जीव कौन सा बंद कर रहा है, कितना, कितने काल का, वहाँ स्थिति कितनी पड़ रही है, साता वेदनी की स्थिति कितनी बांध रहा है। हाँ, यानी स्थिति नहीं बन रही है। स्थिति बंधा है ही नहीं वहाँ पर। तो यहाँ जो बात बता रहे थे ना, हाँ, ये नीचे वाली की, शपक श्रेणी की मैं पूछ रही थी उनको, क्योंकि प्रश्न ऐसा था ना, उनको याद आया वो एक समय का ही बंद होता है क्षपक श्रेणी में, यानी 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में साता वेदनी का बंद है, परंतु वहाँ कषाय नहीं है ना, योग है अकेला, तो जिस समय बंद होता है उसी समय निकल जाता है, उसको ईरिया पथाश्रव कहते हैं। तो वहाँ तो कोई स्थिति बनती नहीं है साता वेदनी की, और जो कुछ होगा वो तो चतुस्थानक होगा, ये तो अलग जीव लिए ये सारे साता वेदनी की ना, बिल्कुल होगी, ये तो 14वें के अंत तक है। साता असाता दोनों की सत्ता है, असाता का बंध कहाँ रुक गया है जरा बोलो तो सही, थोड़े याद करेंगे ना। अरे वाह, सबको याद है, छठे गुणस्थान है। तो ये असाता के भी चतुस्थान बंधक लिए है जी। तो ये संगी पंचमी मिथ्या दृष्टि की बात है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि मुनियों के वगैरह भी वो तो ये चतुस्थान तो बांधेंगे नहीं। हाँ, ये हमने नीचे से चौथी लाइन पढ़ी ना, तृतीय समय में के बदले तृतीय स्थिति में करना, जैसे ऊपर क्या पढ़ा अभी हमने, द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है। अब ऊपर देखो, तदीयाए ठिदीये जीवा विशेषाहिया, प्राकृत में नीचे से चौथी लाइन, हाँ स्थिति में करना उसको। तृतीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक जीव है। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक है। वही बात जो ऊपर लिखी थी, वहां का ग्रुप कौन सा लिया, साता का चतुस्थान और त्रिस्थान, और असाता का द्विस्थान और त्रिस्थान। अब यहाँ दूसरा ग्रुप लिया है, हाँ साता का द्विस्थान और असाता का चतुस्थान, उनमें भी ऐसा ही लिया है, सातों सागरोपम शतपृथक्त्व तक विशेष, हाँ वहाँ विशेष अधिक है और बाद में वो विशेषहीन है। ये कौन सा लिया था, यव मध्य तक विशेष अधिक हुआ था और सागरोपम शतपृथक तक विशेषहीन होते गया था, और ये जीव सागरोपम शतपृथक तक विशेष अधिक हुए और बाद में विशेषहीन। इसके आगे की स्थिति में वे उत्तरोत्तर विशेषहीन हैं। इस प्रकार साता व असाता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति तक, उत्कृष्ट दिख रहा है, उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषहीन विशेषहीन है। इस प्रकार अनंतरोप निधा समाप्त हुई, यानी साता असाता के अपेक्षा इनमें भी वेरिएशन करके बताया उन्होंने। अब परंपरोप निधा की अपेक्षा साता वेदनी के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक तथा असाता वेदनी के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव, ये पहला ग्रुप लिया। फिर दोबारा परंपरा उपनिधा बता रहे अभी, ज्ञानावरणीय की जघन्य स्थिति के जीवों की अपेक्षा उससे पल्योपम के असंख्यात वे भाग जाकर यव मध्य तक दुगुनी वृद्धि को प्राप्त है। क्या कहते हैं अनंत रूप निधाय ने एक एक स्थिति में कितना बढ़ा, पहली स्थिति में इतने थे, दूसरी स्थिति में असंख्यात भाग ज्यादा है, तीसरी में और असंख्यात भाग ज्यादा है, परंपरा निधाय में एकदम वो जंप करके बताएंगे इससे ये कितना गुना है। तो वहां पहले स्थिति दूसरी स्थिति तीसरी स्थिति ऐसा नहीं बताते हुए पहली स्थिति में जितना है तो कहते हैं पल्योपम के असंख्यात वे भाग जाने के बाद वहां पर जो स्थिति होगी, वहां का जो निषेक है वहां दुगुना हो जाता है, फिर पल्योपम के असंख्यात वे भाग जाकर दुगुना होगा। ऐसे कहां तक दुगुना दुगुना होगा, ये वो मध्य तक, ये परंपरा निधा ऐसे ही कहते ना, वो गुणहानि गुणहानि कहेंगे उसको, दुगुण वृद्धि कहेंगे, और फिर बाद में वो आगे बताएंगे। उसके आगे पल्योपम के असंख्यात वे भाग जाकर वे दुगुनी हानि को प्राप्त है। हमने एक एक निषेक की बात की तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है यव मध्य तक, और फिर थोड़ा थोड़ा घटता है, कहा कब तक, सागरोपम शतक पृथक्त्व तक। अब परंपरा निधाय ने हम बीच बीच का एक एक माइलस्टोन बताएंगे, पल्ले के असंख्यात वे भाग जाकर दुगुनी होती है, फिर दुगुनी होती है। देखो हमने क्या देखा था, पहले क्या देखा था, पहले से दूसरे में कितना बढ़ गया, कि पहले को पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दो और उसका एक खंड मिला दो, इतना हुआ था पहले स्थिति से दूसरे स्थिति में अनंत रूप निंदा। ऐसे पल्ले का असंख्यात भाग असंख्यात भाग असंख्यात बढ़ते बढ़ते दुगुना हो जाएगा ना, कितने स्थान जाने पर दुगुना होगा, पल्ले के असंख्यात भाग स्थान जाने पर दुगुना होगा, फिर और पल्ले के असंख्यात भाग जाने पर स्थान जाने पर और दुगुना होगा। इस तरह से कहां तक दुगुना दुगुना होता है, तो यव मध्य तक। उसके बाद क्या होगा, घटेगा तो उसको दुगुना हानि कहते, दुगुना हानि यानी आधा आधा होगा, यव मध्य तक दुगुना दुगुना और फिर दुगुने हानि दुगुनी हानि। वही जो पहले लिमिट बताई थी सागरोपम शतपृथक्त्व जहां तक बंद है वहां तक। अभी तीसरी लाइन दुगुने हीन है। यहाँ लिखा ना, इस प्रकार सागरोपम शत पृथक पृथक वे दुगुणहीन है। अब दूसरा ग्रुप, साता वेदनी के द्विस्थान बंधक जीव और असाता वेदनी के चतुस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणी की जघन्य स्थिति संबंधी जीवों की अपेक्षा उनसे पल्योपम के असंख्यात में भाग जाकर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ यवो मध्य तक दुगुना दुगुना नहीं कहा, डायरेक्ट वो सागरोपम शत पृथक्त्व तक दुगुना दुगुना होता है, क्योंकि हमने वैसा ही देखा था उसमें भी। इस प्रकार सागरोपम शत पृथक्त्व तक वे दुगुनी दुगुनी वृद्धि को प्राप्त होते गए हैं। इससे आगे अब दुगुनी हानि कहेंगे, पल्योपम के असंख्यात में भाग जाकर वे दुगुनी हानि को प्राप्त है। इस प्रकार साता व असाता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति तक वे दुगुने दुगुने हीन है। एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर, अपनी भाषा में एक गुण हानि का जो आयाम है ना, तो एक उसको लिखा क्या, एक जीव, क्योंकि जीव गुण हानि लिखना था ना उनको, तो एक जीव दुगुण वृद्धि। हम गुण हानि या गुण वृद्धि लिखते नहीं है, परंतु वहां हानि हो या वृद्धि हो हम उसको गुण हानि कह देते हैं। तो ये जीव गुण हानि की बात है, तो कहा एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर, यानी अपनी भाषा में एक गुण हानि का आयाम जो लंबाई है वो कितनी है, पल्योपम के असंख्यात वर्गमूल प्रमाण है। पलिदोवम वर्गमूलानि एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतरम असंख्यज्जानि पलिदोवम वर्गमूलानि। ये भाषा उनकी अटपटी है। पलिदोवम वर्गमूलानि असंख्यात, असंख्यात पल्योपम के वर्गमूल ऐसा चाहिए। पल्योपम के असंख्यात वर्गमूल अलग बात है, वर्गमूल को असंख्यात से गुणा करना है। ऊपर देखो ना, ऊपर क्या लिखा है देखो, ये जीव दुगुण वृद्धि हानि ठानांतरम असंख्यज्जानि पलिदोवम वर्गमूलानि। असंख्यात पहले लेना चाहिए, असंख्यात पल्योपम के वर्गमूल, यानी पल्योपम के वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात। ये गुणहानि का प्रमाण हुआ, गुणहानि की लंबाई हुई, यानी इतने स्थान जाने पर वो जो कुछ है। देखो वहां क्या कहा था, पल्ले का असंख्यात भाग, अब उसका प्रमाण क्या है, क्योंकि इतने स्थान जाने पर दुगुने होते हैं, तो पल्ले का असंख्यात भाग है उसको यहां दूसरी भाषा में कहते हैं, पल्ले का वर्गमूल निकालो और उसको असंख्यात गुना करो। आपको पहले याद होगा हमने एक गणित ऐसा देखा था, नहीं पल्ले के असंख्यात भाग हमको निकालना है, वो पल्ले के असंख्यात भाग वाला कौन सा असंख्यात निकालना है। अब वो पल्ले को भूल जाओ, हम पनट्ठी को समझते हैं। पनट्ठी ने 65,536, उसका असंख्यात भाग करना है हमको, ये उसको हम चौथा भाग करना है, असंख्यात के बदले चौथा लेंगे, तो इसको चौथा भाग करना है बराबर, यानी पनट्ठी डिवाइडेड बाय 4। उसको दूसरी भाषा में हम कहेंगे तो हम कहेंगे असंख्यात प्रथम वर्गमूल है उसके, यानी 256 से कुछ संख्या से गुणा करेंगे तो यही वैल्यू हमको आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, 4 के आगे की वैल्यू कौन सी है, वर्ग 4 का वर्ग है 16 और 16 का वर्ग है 256, तो 4 गुना 16 गुना 256 ये होता है ना, ऐसा उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी। पनट्ठी का चौथा भाग कहो या 4 गुना 16 गुना 200, देखो यदि हम चार के बदले यहाँ चार गुना चार करते तो 16 और 16, 16 गुना 16 256, 256 गुना 256 पनठी आ जाती। तो हमें निकालना है पल्य का असंख्यातवा भाग। अब उसको दूसरी भाषा में लिखना है तो हम क्या कहेंगे, स्क्वेयर रूट पल्य को असंख्यात से गुणा करेंगे। ये वाला सेम असंख्यात नहीं, वो वर्गमूल तक के सभी वर्गधारा जो है उनकी, जो वर्गशला का उन सबकी वर्गशला का नहीं, वर्गों के जो बीच वाले जितने वर्ग हैं, जिस विशिष्ट असंख्यात से पल्य को भाग देना है उसके आगे का वर्ग, आगे का वर्ग, आगे का वर्ग, इसे पल्य के पहले वर्गमूल तक सभी वर्गों का जो गुणा करो उतनी वैल्यू आएगी। तो आप जो कहते हैं असंख्यात पल्य लेना, ऐसी बात नहीं है। स्टेटमेंट ऐसा लिखना है कि पल्य का वर्गमूल इकट्ठा लिखना और उसको असंख्यात करना है। तो हम पढ़ेंगे ऐसा, असंख्यात पल्योपम के वर्गमूल, पल्य के असंख्यात वर्गमूल, वर्गमूल है हाँ बराबर है, ऐसा नहीं लेना है। पल्य के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करना, ऐसा ही लेना है। असंख्यात पल्योपम के वर्गमूल, अच्छा ये नहीं, वो पल्योपम को असंख्यात कर रहे हैं हम, अच्छा। देखो लिखते समय ऐसा लिखो, पल्ले का प्रथम वर्गमूल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात, या असंख्यात के बाद पल्ले पल्लेपम के वर्गमूल को इन्वर्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय वर्गमूल, तृतीय वर्गमूल, चतुर्थ वर्गमूल, ऐसे असंख्यात वर्गमूल, ऐसा भी अर्थ होगा। यानी कहीं कैसे भी लिखे तो ये उसका अर्थ बदल ही रहा है। असंख्यात एक शब्द और पल्य का वर्गमूल एक शब्द, तो ये हो सकेगा। हाँ रहने दो, कुछ चेंज मत करो, फिर उसका अर्थ सही समझ लो बस, जो आपको लगता है रखो। हाँ आगे पढ़ेंगे अभी। नाना जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर, एक गुण हानि कितनी है, असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय पहले का प्रथम वर्गमूल, क्योंकि ऊपर ऐसा लिखा है। देखो आप जो कहते ना ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, प्राकृत वर्ग देखना, ए ये जीव दुगुण वड्डी हानि ठाणांतरम असंख्य जानी पलिदोवम वग्ग मूलानी, नीचे से चौथी, अब नीचे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नाना जीव गुणहानि, नाना जीव का गुणहानि का अर्थ क्या है, नंबर, अनेक है ना, नंबर ऑफ गुणहानि ऐसे कितने। देखो एक बार दुगुनी वृद्धि हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, फिर वो हानि होते होते गए, ऐसे गुणहानियां टोटल कितनी है, तो कहते उसका प्रमाण अभी बताएंगे। नाना जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर पल्योपम के वर्गमूल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ये असंव्यातवे हुआ है, असंख्यातवे करना, उसका बीच में वो र लिख देना उसमें। क्या कहते, पहले हमने प्रथम वर्गमूल को असंख्यात से गुणा किया था, अब यहाँ कर क्या करें, वर्गमूल के असंख्यात विभाग, पल्य का प्रथम वर्गमूल डिवाइडेड बाय असंख्यात। यानी एक गुणहानि लंबी है, और नंबर ऑफ गुणहानि कम है, वो वर्गमूल का असंख्यात गुणा था, ये वर्गमूल का असंख्यात भाग है। नाना जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर स्तोक है, ये यहाँ अल्पभूत उसका बताते हैं, यानी नाना गुणहानियां कम है और एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर उनसे असंख्यात गुणा है, ये हमने देखा था ना। देखो, एक तो है वर्गमूल को असंख्यात गुणा किया, ये क्या है गुणहानि का आयाम, गुणहानि कितनी बड़ी है, कितने स्थान जाने पर दुगुण वृद्धि या हानि होती है, तो इतने स्थान जाने पर। ऐसे गुणहानियां कितनी है, तो कहते हैं स्क्वायर रूट पल्ले उसका असंख्यात भाग, तो इसका इसका प्रपोर्शन कितना है, यह असंख्यात भाग है और यह असंख्यात गुणा है ना, तो इससे यह असंख्यात गुणा हो गया। नाना गुणहानि कम है और एक गुणहानि का जो आयाम है वो उससे असंख्यात गुणा है। ये जो साइन लिखी है ना, ये असंख्यात की साइन है। इस प्रकार परम्परोपनिधा समाप्त हुई। ये दुगुने दुगुने वृद्धि होती है, इतना ही परम्परोपनिधा में बताना है। हाँ नहीं आता 65,000, नहीं नहीं पहले वाले जो 4, 16 और 256 का गुणा करेंगे, 250 नहीं, उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। देखो देखो 256 गुणा 256 गुणा 65 आती है, 256 के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 गुणा 16 करना पड़ेगा, परंतु ये हमने 4 गुणा 16 ही लिया है, यानी 4 कम लिए, यानी 4 × 4 ना। हाँ अभी 2 से अगर हमको 2 से भाग देना है, इसको पनट्टी को 2 से भाग देना है, तो स्क्वायर रूट इसका क्या है, 256 है, तो 2 से लेकर आगे की सभी संख्याओं का गुणा करो, 2 × 4 × 16 × 256, वो उतनी संख्या आएगी जो हम पनट्टी को 2 से भाग देते हैं। तो हम जिस असंख्यात से पल्ले को भाग देते हैं उससे आगे के सभी वर्गों को आपस में गुणा करना, कहाँ स्क्वायर रूट तक, नहीं उसी का वैल्यू असंख्यात होती है, उसी को असंख्यात कह दिया उन्होंने। प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा जो किया है ना, उस असंख्यात की वैल्यू की कौन सी है, जिस असंख्यात से हम भाग देना चाहते हैं उसका वर्ग, उसका वर्ग, उसका वर्ग, कहाँ तक, प्रथम वर्गमूल तक। अब यहाँ तो पहले हमने प्ररूपणा देखी, प्रमाण देखा, श्रेणी यानी अनंत रूपनिधा और परम्परोपनिधा, उसके बाद आपका फेवरेट है अवहार। प्रेरणा बहन को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ अवहार में क्या समझना, कि ये जो जीवों का प्रमाण है उससे सभी जीवों को भाग देंगे, तो जो प्रमाण आएगा उसको इस स्थान का अवहार काल कहेंगे, ये कहने की पद्धति है। तो पूछेंगे कैसे, देखो कि जघन्य स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से, अभी प्रमाण तो ऊपर उन्होंने बता दिया इतने इतने जीव है जघन्य स्थान में, उस जीवों से समस्त जीव, सभी जीवों का अगर हम भाग देंगे, कितने काल से अपहृत होते हैं, उस भागार का प्रमाण क्या है, उसको कहते हैं कितने काल से अपहृत होते हैं। उक्त प्रमाण से वे असंख्यात गुणहानि, वो गुरु हुआ है, असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होते हैं, टोटल जीव। हाँ अभी पंचेंद्रिय है, ये जो यवोमध्य हमने देखे थे ना जघन्य से, ये सारे जो हमने जघन्य से वहां पंचेंद्रियों में, हाँ संख्या अपेक्षा देखो कितना असंख्यात गुणहानि स्थानांतर, एक गुणहानि स्थानांतर कितना देखा था हमने, ये असंख्यात पल्ल्य का वर्गमूल, और ऐसे उसको भी असंख्यात गुणा करो। समझ में, यहाँ जघन्य स्थान में कितने जीव है, उस जीवों के द्वारा टोटल जीवों को भाग देंगे तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, जो अभी हमने गुणहानि का प्रमाण देखा उसको असंख्यात गुणा करो उतनी आएगी। द्वितीय स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र काल से अपहृत होते हैं। अभी दूसरे स्थान में जीव विशेष अधिक हमने देखे थे, फिर भी उसको प्रमाण तो असंख्यात गुणहानि होगा। अभी जीव की संख्या बड़ी है तो भागहार थोड़ा छोटा होगा, फिर भी उसको जो कथन है असंख्यात गुणहानि तो उतना ही रहेगा। इस प्रकार यव मध्य तक ले जाना चाहिए। यव मध्य के जीवों के प्रमाण से अभी एग्जैक्टली यव मध्य पर कितने काल से अपहृत होते हैं, तो यव मध्य के जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल द्वारा धारा हुआ है द्वारा अपहृत होते हैं वो रूह बराबर करना। अब कहते वो हमने असंख्यात गुणहानि की बात देखी थी ना, असंख्यात गुणहानियों से अपहृत होते हैं, फिर कितने ही गुणहानियों से तो यव मध्य तक आ गए, तो वहां तीन गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होते हैं। तीन गुणहानि का जितना प्रमाण है उससे वे अपहृत होते हैं। इसी प्रकार यव मध्य के आगे भी जानकर कहना चाहिए, आगे फिर जीवों की संख्या कम होती तो भागार बढ़ेगा। इस प्रकार अवहार प्ररूपना समाप्त हुई। अब ये भागा भाग जघन्य स्थान में स्थित जीव सब जीवों के हुए जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं। पहले हमने कितने गुणा कहा था, अभी कितने वे भाग प्रमाण है। भागा भाग यानी पहले बड़ी संख्या कहेंगे, सब जीव इतने हैं और जघन्य स्थान में उसके कितने भाग प्रमाण जीव हैं, वे उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण हैं। क्योंकि हमने संख्यात गुणा किया था, असंख्यात गुणहानि से गुणा किया था ना, अभी उसके उतने वे भाग है ऐसा कहेंगे, उल्टा कहेंगे। इस प्रकार सब स्थानों के जीवों को जानकर भागा भाग की प्ररूपणा करना चाहिए। अब अल्प बहुत्व कहेंगे, यव मध्यों के उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है। उनसे जघन्य स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। यव मध्य तक अभी पढ़ेंगे, अभी क्या कहना चाहते। देखो यव मध्यों के उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है। यव मध्य में भी उत्कृष्ट स्थान, यव मध्य में जघन्य स्थान ऐसे अलग अलग ले लिए। उनसे जघन्य स्थान में जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार पल्योपम का असंख्यातवा भाग है। उनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। ने कुछ गड़बड़ है। यव मध्यों के ऊपर के स्थान में चाहिए वो उत्कृष्ट। देखो सवत्थवा जव मज्जाण मुक्कसे ठाणे जीवा। यव मध्यों से जो ऊपर जो उत्कृष्ट स्थान है उसमें जीव, अभी यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, पहले हम समझ लेंगे। यव मध्य के ऊपर की ओर जीव कम है, नीचे की ओर उससे ज्यादा है, और यव मध्य में उससे असंख्यात गुणा है। हाँ, ये यव मध्य के ऊपर हमने देखा ना वो सागरोपम शत पृथक, हाँ नीचे है और उससे असंख्यात गुणा बीच में है। देखो यव मध्यों के लिखा ना सवत्वा यव मज्जाण मुक्कसे ठाणे जीवा, उनसे जघन्य स्थान में जो असंख्यात गुणे हैं गुणकार पल्योपम का असंख्यात अभाव है, उनसे यवमध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि वहां तो सबसे ज्यादा है ना जीव। गुणकार क्या है? यवमध्य से नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है। नीचे मान लेते तीन गुणहानियां हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करना आपस में, तो उतने गुणा करना यवमध्य में। यवमध्य से नीचे के जघन्य स्थान संबंधी जीवों की अपेक्षा ऊपर के सब जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? ऊपर के सब है ना, उसमें यवमध्य प्लस ऊपर के लिया है ना, हाँ। तो गुणकार क्या है ये? गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणहानियां है नीचे की अपेक्षा ऊपर के। यवमध्य से नीचे के जीव उनसे विशेष अधिक हैं। उनसे यवमध्य के उपरिम जीव विशेष अधिक हैं। ये एक वाक्य रिपीट हुआ है आगे का जो है ना, उनसे यवमध्य के उपरिम जीव विशेष है, उनसे सब जीव विशेष अधिक है। इस प्रकार अल्प बहुत्व प्ररूपना समाप्त हुई। हमने पहले देखा था ना उत्कृष्ट जगन्य बीच में ज्यादा वगैरह, उसी अपेक्षा यहां बताए हैं। इसी प्रकार पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र एकेंद्रिय के विचार स्थानों में, देखो ये सारे जो अभी हमने स्थान देखे थे उत्तरस संबंधी देखे थे, यहां लिखा है देखो 108 पृष्ठ पर नीचे से पांचवी लाइन, यहां पहले त्रस जीवों का आश्रय करके प्ररूपणा करने पर, ये जो अभी हमने प्ररूपणा देखी है वो त्रस जीवों के आश्रय से प्ररूपणा देखी है। अब यहां कहते हैं इसी प्रकार, अब एकेंद्रियों के कितने स्थान है टोटल, कल हमने देखे थे पल्य के असंख्यात विभाग, इसी प्रकार पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र एकेंद्रिय के विचार स्थानों में, अलग अलग स्थान है उसको विचार स्थान कहा था, और उसके ही संख्यात वे भाग प्रमाण विकलेंद्रिय के विचार स्थानों में, देखो एकेंद्रिय के स्थान पल्य के असंख्यात वा भाग है, और जो उनका भाग है उसका संख्यात वा भाग करो उतने विकलेंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय और चतुरेंद्रिय उनके स्थान है, उनमें एकेंद्रिय एवं विकलेंद्रिय जीवों की भी प्ररूपणा करना चाहिए। विशेष इतना है कि साता व असाता वेदनीय के द्विस्थान संबंधी यवमध्य ही है, क्योंकि यहाँ त्रिस्थान और चतुस्थान अनुभागों का बंध नहीं होता, किंतु संगी पंचेंद्रिय की गुणहानी शलाकाओं से वहां की गुणहानी शलाकाएं असंख्यात गुणीहीन व संख्यात गुणीहीन है। एकेंद्रियों में असंख्यात गुणीहीन होगी और उससे वो संख्यात गुणीहीन है। अभी प्रमाण, एकेंद्रिय जीव अनंत है। पहले हमने त्रस जीवों की बात, वो प्रतर के असंख्यात व भाग इतनी देखी थी, वो त्रसों की संख्या देखी थी, अब यहां एकेंद्रियों की संख्या अनंत है। संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति से नीचे के और असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति से ऊपर के सत्व स्थानों का जीव समुदाहार करने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि उसका उपदेश प्राप्त नहीं है। हमने देखे थे संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि में उत्कृष्ट स्थिति से नीचे 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 आते 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 हमने ध्रुव स्थिति तक देखे थे, उसके बाद हमने एकेंद्रियों के कुछ यानी वो त्रसों में से एकेंद्रिय में गया है, उसकी अपेक्षा वहाँ सत्व की अपेक्षा से वो अलग अलग काल की अपेक्षा वेरिएशन देखे थे, परंतु जो बंद स्थान हो गए, जो ध्रुव स्थिति तक के स्थान देखे, उसके बाद जो असंगी है वो कितना अधिक से अधिक बंद करता है, मिथ्यात्व का 1000 है परंतु उसका 3/7 भाग, तो बीच वाले जो स्थान है उसका उपदेश अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहते हैं। उसके स्वामी कितने हैं, कितने जीव है, उसका उपदेश यहाँ नहीं मिल सकता। हमने ध्रुव स्थिति तक लाना और फिर उसके नीचे के स्थान, वहाँ उसके स्वामी जीव हो गए कैसे अलग अलग, क्योंकि पंचेंद्रियों से उसमें गया है और सत्ता में पड़ा है, ऐसे तो है, परंतु बंदे की अपेक्षा से उनके पास ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहते एवं छन्नम कम्माणम, ज्ञानावरणी के समान ही शेष छह कर्मों के उत्कृष्ट स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। किसको छोड़ा होगा यहाँ? हाँ देखो, ज्ञानावरणीय में वगैरह जो है स्वामित्व कहाँ किसका ज्यादा है तो उसकी बात की, तो ऐसे अन्य छह कर्मों में वैसे उनके स्वामित्व हो गए। देखो जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्वामित्व की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार शेष छह कर्मों की प्ररूपणा करना चाहिए। अभी हर एक के उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग होगी। हो ज्ञानावरण की हमने 30 कोड़ाकोड़ी देखी, तो मोहनीय के 70 कहना पड़ेगा। विशेष इतना है कि मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करते समय संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय तक स्वामी है। ज्ञानावरण में हमने कहां से कहां तक देखा था? 12वें गुणस्थान तक तो सत्ता देखी थी, 10वें के अंत तक उसका बंध देखा था। अब यहां बंध कहां तक होगा? हाँ बोलो, 10वें के अंत तक। मोहनीय का बंध 9वें तक और सत्ता 10वें तक। हाँ देखो, तो अनुत्कृष्ट स्वामित्व है ना, एक 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 समय घटाते हुए स्वामित्व, कहीं बीच में बंध की अपेक्षा लगेगी, कभी वो सत्व की अपेक्षा लेंगे, तो एक समय वाला वो सत्व कहाँ तक रहेगा? सूक्ष्म सांप्राय का अंत, वो क्षपक भी लेना उसमें, क्षपक लेना, हाँ उपशमक नहीं लेना, तो वहां तक स्वामी है ऐसा कहना चाहिए। नाम व गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। इनकी अनुत्कृष्ट स्थिति के स्वामित्व का कथन करते समय वहां कहां से कहां तक लेंगे? अभी हम संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें का अंतिम समय है ना, नाम और गोत्र कहां तक है? 14वें का अंतिम समय तक। तो कहते लेकर, यहाँ समयवर्ती लिखा है परंतु ऊपर चरिम समय अयोगीति वत्तव्यम लिखा है ना, नीचे से तीसरी लाइन चौथी, हाँ अंतिम लिखो, अंतिम समयवर्ती अयोग केवली तक, लेकर के बाद अंतिम शब्द डालना। अंतिम समयवर्ती अयोग केवली तक स्वामी है ऐसा कहना चाहिए। वो अंतिम समयवर्ती वाले के एक समय का काल है, तो वहां वो जगन्य काल हुआ ना उसका। इसी प्रकार वेदनीय कर्म की भी प्ररूपणा करना चाहिए। विशेष इतना है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है वेदनीय की, और उसका जगन्य स्थिति कहां पर है? आयोग का अंतिम समय। अब आयु कर्म की बात अलग से बता रहे, पहले 7 कर्मों की बात बताई ना, ज्ञानावरण की बताई, और कहते अन्य 6 कर्मों की भी ऐसी समझना, उसमें जहां उत्कृष्ट स्थिति में वेरिएशन है और कहां जघन्य स्थिति है उसकी बात बता दी। अब यहां आयु की बात उठाएंगे। सामित्तेन उक्कस्य पदे आहु अव्ययेन कालदो उक्कस्य कस्य। पहले हमने 10वीं पुस्तक में वो किसके ज्यादा होते परमाणु, तो फिर उसको योग वगैरह की बहुत लंबी चौड़ी बातें करनी पड़ी, अब यहाँ काल की अपेक्षा लेना है, यानी आयु की उत्कृष्ट स्थिति किसके है उसकी बात बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। अब उसकी कंडीशंस बताएंगे किसके होती है। अन्न दरस मनुष्यस्य अन्न ने कोई एक, उसका अर्थ हम बाद में देखेंगे हम नीचे, वा पंचिंद्रिय तिरिक्ख जोनीयस्य वा सन्निस्स सम्मा इट्ठिस्स वा मिच्छा इट्ठिस्स वा सवाही पज्जत्ति पज्जत्त यदस्स कम्म भूमियस्य वा कम्म भूमि परिभागस्य वा संखेज्यवासा उस इत्थिवेदस्य वा पुरिषवेदस्य वा नौंसय वेदस्य वा जलचरस्य वा थलचरस्य वा सागार जागार तप पावग संकिलिट्ठस्य वा तप पावग विशुद्धस्य वा उक्कस्याय आबाधाय जस्स तम देव निरयाउम पड़म समय बंधम तस आहुय वेदेना कालदो उक्कस्सा। अब इसका अर्थ बता दें, जो कोई मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी है, सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, कर्मभूमि या कर्मभूमि प्रतिभाग में उत्पन्न हुआ है, ये इसका अर्थ हमने देखा था। कर्मभूमि यानी ये जो 15 कर्मभूमि है, ढाई द्वीप वाली, 5 भरत 5 ऐरावत और 5 विदेह, और कर्मभूमि प्रतिभाग यानी स्वयं प्रभु पर्वत के आउटर साइड का स्वयं भूरमण द्वीप और पूरा ही स्वयं भूरमण समुद्र, उसको कर्मभूमि प्रतिभाग कहते हैं, उसमें उत्पन्न हुआ है। संख्यात वर्ष की आयु वाला है, स्त्रीवेद पुरुषवेद या नपुसक, ये न के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए, पू के ऊपर चाहिए। या नपुसक वेद से संयुक्त है, जलचर अथवा थलचर है, नभचर को छोड़ा यहां डोलिए, साकार उपयोग से सहित है, जागरूक है, तत्प्रायोग्य। तत्प्रायोग्य क्यों लिखा? हाँ, संकलेश है विशुद्ध, तत्प्रायोग्य नहीं, आयु आयु के प्रायोग्य, क्योंकि अति संकलेश और अति विशुद्धि में आयु का बंधन है, तो आयु के बंधन के योग्य प्रायोग्य। तत्प्रायोग्य संकलेश अथवा विशुद्धि से संयुक्त है, तथा जो उत्कृष्ट आबाधा के साथ देव व नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाला है। उसके बांधने के प्रथम समय में आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। वही तो बात है, आबाधा कब गिनते हैं? अगले भव की आयु बनती है, पहले भव, हाँ, प्रीवियस भव के 1/3 भाग बाकी है, तब उसकी उत्कृष्ट आबाधा होगी। तो वहां से लेकर जो उत्कृष्ट आयु बांधी उसने, हमको आयु समझना है, आयु की उत्कृष्ट वेदना काल गिनना है, तो ये आबाधा में इस आयु को गिनना। हाँ, प्रथम समय में, वो प्रथम समय में ही उसने बांधना शुरू किया ना, तो वो अंतर्मूर्त को भी कट नहीं करना है। पहले समय में उसने मान लेते 33 सागर की आयु बांधी, और यहाँ पूर्व कोटि का त्रिभाग है, तो उसकी आयु कोई भी आयु, वहां एक तो वर्तमान मनुष्य तिर्यंच की आयु है और आगामी जो है वो देव या नारकी किया है, तो 33 सागर प्लस ये 1/3 पूर्व कोटि, इतना आयु कर्म का काल इतना है ना। देखो यहाँ क्या कहते हैं, उसके बांधने के प्रथम समय में आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है। अब ये अन्न, ये एक एक शब्द लेके उसका अर्थ समझाएंगे। पहला अन्यतर ने कोई एक ऐसा लिखा है, कोई एक क्यों लिखा? क्योंकि वो बड़ा है या छोटा है इसकी बात नहीं, वो महामत्स्य है कि तंदुल मत्स्य है, क्योंकि दोनों ही सातवें नरक की आयु बांधते हैं ना, तो अवगाहना का कुछ बात नहीं। कुल या जाति, वर्ण, विन्यास और संस्थान आदि के भेदों से निर्मित विशेषता का अभाव। यह विशेषताएं यानी डिफरेंस किस किस के द्वारा हो सकते हैं, अवगाहना अलग हो सकती है, जाति कुल अलग हो सकता है, वर्ण वगैरह अलग हो सकता है, वर्ण विन्यास होना चाहिए, वर्ण विन्यास क्या लिखे नीचे उसको, विन्नान, अच्छा विज्ञान होना चाहिए विन्यास। संस्थान यानी उसका आकार, विन्यास नीचे विन्नान लिखा है, विन्नान विन्यास संस्थान, विन्यास यानी उसका स्ट्रेचर ऐसा ही लगेगा। हम पहले विन्यास देखा था किसमें, विन्यास शब्द कहाँ आया था, वो निषेकों की रचना होती है ना, गोपुच्छकार होती है, ऊपर टेपरिंग होती है, या उसको विन्यास कहा था, यानी उसकी जो कुछ रचना होगी, जो कुछ है समझ लेना, यानी ये जीवों में ये जो कोई भेद पाए जाते हैं उसकी वहां कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि आयुबंध में काला है कि गोरा है उससे कोई आयुबंध में फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा जीव है हाथी है या दूसरा कोई है, अभी पंचेंद्रियों में हम ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पंचेंद्रियों की एक छोटी बड़ी अवगाहना है तो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो विशेषता का अभाव बतलाने के लिए सूत्र में अन्नदरस्य यह कहा है, देवों की उत्कृष्ट आयु के बंधक मनुष्य ही होते हैं तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंधक मनुष्य अथवा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, यह जतलाने के लिए ऊपर लिखा ना मनुष्य या तिर्यंच, पंचेंद्रिय लिया है वो भी संगी पंचेंद्रिय होगी। देखो सातवें नरक के ना आयु कौन बांधता है, ये मत्स्य वगैरह बांधेंगे या मनुष्य बांधेंगे, तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य, इसलिए क्या कहा, मनुष्यस्य वा पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनियस्य वा सन्निस्स, ऐसा कहा। देवों की उत्कृष्ट आयु को सम्यक दृष्टि ही बांधते हैं, वो भी मुनि हो गए ना, क्योंकि वो 33 सागर वाली जो आयु है तो इसलिए वहां सम्यक दृष्टि इतना ही लिया उन्होंने, तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु को मिथ्या दृष्टि ही बांधते, इसलिए ऊपर सूत्र में सम्मा इट्ठीसवा मिच्छा इट्ठीसवा ऐसा लिखा। यह प्रकट करने के लिए सम्मा इट्ठीसवा मिच्छा इट्ठीसवा ऐसा निर्देश किया गया है। जो 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो चुके हैं वे ही नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधते हैं, यह जतलाने के लिए। देखो जो पर्याप्त जीव ही बांधेंगे ना, लब्धि अपर्याप्त जीव नारकी की आयु बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, नहीं बांधेंगे, और निवृत्ति अपर्याप्त जीव नहीं बांधेंगे, पर्याप्ति पूरी होने के बिना आयु का बंध होगा ही नहीं, तो ये बतलाने के लिए सौवा ही पज्जत्ति ही पज्जत्त यदस्य ऐसा यह कहा है, यानी सभी पर्याप्तियों से पूर्ण होने पर उसके बिना ये पर्याप्त जीवों को तो आयु का बंध होता ही नहीं है, अपर्याप्तों का आयु का बंध होता है परंतु उनके तो देवनारकी की आयु बनती ही नहीं है, हमें यहां लंबी देवनारकी की आयु बांधने वाला जीव लेना है। देवों की उत्कृष्ट आयु 15 कर्म भूमियों में ही बनती है, क्योंकि ये जो भावलिंगी संत तो वहीं पर हो गए, तो देवों की उत्कृष्ट आयु कहां, कर्म भूमि में, तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु 15 कर्म भूमियों और कर्म भूमि प्रतिभागों में भी बांधी जाती है, वो तो कर्म भूमि वाले तो बांधते ही है, कर्मभूमि प्रतिभाग वाले भी बांधते हैं। मेरा सवाल यह है, कर्मभूमि प्रतिभाग वाले देवों की आयु बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे, कितनी बांधेंगे, कितनी बांधेंगे? हाँ, तो 16वें स्वर्ग तक की आयु बांध सकते हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, परंतु वो तो भावलिंगी है, भावलिंगी नहीं, द्रव्यलिंगी मुनि लिए ना, मुनि पद लिए, शुभ भाव उसकी वजह से। तो ये बतलाने के लिए कम्म भूमियस्य कम्म भूमि परिभागस्वा ऐसा कहा है। देवों व नारकियों की उत्कृष्ट आयु को असंख्यात वर्षायुष का तीर्यंचे या मनुष्य नहीं बांधते हैं। क्यों नहीं बांधते हैं? हाँ, तो असंख्यात वर्षायुष का मनुष्य तीर्यंच यानी भोग भूमि के मनुष्य तीर्यंच। तो भोग भूमि के मनुष्य और तीर्यंच देवों की आयु बांधेंगे तो कितनी बांधेंगे? हाँ, मैंने कितनी बांधी विचार। हाँ, एक सागर होगी ना, एक सागर होगी। और नारकी की बांधेंगे तो भोग भूमि के जीव मिथ्या दृष्टि हो तो सभी भवनत्रिक में जाते हैं, और सम्यक दृष्टि हो तो सौधर्म ईशान में जाते हैं। ऐसा नियम है भोग भूमि वाले। किसने बोला अच्छा है अच्छा नहीं? कोई भी यानी लंबी आयु बांधता है ऐसा लिया। देखो क्या कहते हैं, देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु को असंख्यात वर्षायुष का तीर्यंच या मनुष्य नहीं बांधते, यानी भूभूमि वाले तीर्यंच मनुष्य उस आयु को नहीं बांधते हैं, किंतु संख्यात वर्षायुष का ही बांधते हैं। यानी ये जो लंबी आयु बांधने वाले हैं वो संख्यात आयु वाले मनुष्य तीर्यंच हैं। यह जतलाने के लिए संख्यज आशावस ऐसा निर्देश किया है। हाँ, वो असंख्यात वर्षायुष का नहीं बांधते, इसलिए संख्यात वर्षायुष का मनुष्य तीर्यंच लिए। जो कर्मभूमि का नाम नहीं लिया मगर उन बताना तो वे ही चाहते। वो तो पहले बता दिया कर्मभूमि वाले, परंतु कर्मभूमि वाले कोई असंख्यात वर्षायुष का होते ही नहीं है, फिर भी दोबारा कितने वर्षायुष वाले है ये बताने के लिए दोबारा उस भाषा में बता दिया। एक बार तो कर्मभूमि वाले ही बांधते बता दिया था, अब फिर दोबारा बता रहे कि असंख्यात वर्षायुष वाले नहीं बांधते, संख्यात वर्षायुष वाले ही बांधते हैं। देवों व नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का तीनों वेदों के साथ विरोध नहीं है, यह जतलाने के लिए इत्थि वेदस्सवा पुरिस वेदस्सवा नवंसय वेदस्सवा ऐसा कहा है। यहां भाव वेद का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि द्रव्य वेद का ग्रहण करने पर द्रव्य स्त्री वेद के साथ, जैसे जो स्त्रियां जो है साथ भी नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का प्रसंग आता है, परंतु उसके साथ है ना, द्रव्य स्त्री वेद के साथ नारकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध होता नहीं है, क्योंकि पांचवी पृथ्वी तक सिंह और छठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती है, इस सूत्र के साथ विरोध आता है। यानी वो सिंह से भी वो परिणाम उसके खोटे हो जाएंगे ऐसा कहते। हाँ, जलचर ही सातवें नरक में जाते हैं, क्योंकि कितने हिंसरश वापस जो बताया अभी सिंह वो पांचवें तक जाते हैं, और जो मत्स्य है जलचर सातवें में जाने वाले वही होते हैं, क्योंकि हमने ये वो बात देखी थी, सातवें में से निकला और फिर सातवें में गया, तो कैसे पॉसिबल है? या तो सातवें में से मनुष्य तो होता नहीं है, तिर्यंच होता है, वो भी हिंस्र श्वापद होता है। तो पहले सिंह या वाघ हुआ, फिर वहां से जलचर में गया और फिर वहां से सातवें नरक में गया। डायरेक्ट नहीं होता, नहीं डायरेक्ट जलचर नहीं होता, सातवें नरक से निकलकर डायरेक्ट जलचर नहीं होता, नहीं फिर भी वो जो कुछ है बीच में उसको एक तिर्यंच का करना पड़ेगा। वो भले पर्याप्त होकर वो कदली घातों के जो कुछ होगा हो सकता है, परंतु बीच में एक भव होगा उसका। जलचर है शार्क, हाँ थलचर होगा, थलचर तिर्यंच होगा। हाँ अब यहाँ कहते हैं देवों की भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्रीवेद के साथ नहीं बनती, क्योंकि अन्यथा अच्युत कल्प से ऊपर नियमतः निर्ग्रंथ लिंग से ही उत्पन्न होते हैं। यह अच्युत कौन से स्वर्ग का नाम है? सोलवा। इस सूत्र के साथ विरोध आता है, यानी ग्रेवियों में भी कोई स्त्री नहीं जाएगी। और मल्लीनाथ को स्त्री बना दिया जो अपराजित में थे, वहां से आए थे ना, अपराजित स्वर्ग से आकर यहाँ से मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए थे। और द्रव्य स्त्रियों के निर्ग्रंथता संभव नहीं है, क्योंकि वस्त्रादि परित्याग के बिना उनके भाव निर्ग्रंथता का अभाव है। ये उनके उतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ये वस्त्र की तो फिर बिल्कुल स्थूल बात बताई है, उनके सहनन भी उतने नहीं होते, क्योंकि नीचे के तीन ही सहनन होते हैं, ऊपर के तीन उनके होते ही नहीं है। और जो श्रेणी योग्य पुरुषार्थ जो है या यो मुनि योग्य भी जो है, मुनियों को भी नीचे के तीन सहनन में सातवां गुणस्थान होता है, परंतु स्त्रियों में तो पांचवें गुणस्थान जितनी ही स्थिरता होती है। उनके भाव चंचल होते हैं ज्यादा, ये भाव की स्थिरता होनी चाहिए अधिक पुरुषार्थ, अधिक ऊपर के गुणस्थानों में जाने के लिए। भावों की जो स्थिरता है, आत्मा में जो रमणता है, अधिक स्थिर, ये भावों में चंचलता थी ना, कल बात आई थी ना, वो जयसेनाचार्य की टीका, क्षुब्ध होते, राग द्वेष मोह के कारण क्षुब्धता होती है। तो ऐसी चंचलता होगी तो वहां वो आत्मा में स्थिरता नहीं हो पाएगी, इसलिए उनके पांचवे गुणस्थान तक का पुरुषार्थ है, ऊपर का नहीं है। द्रव्य स्त्री की बात है, भाव स्त्री वेद जिसको है पुरुष को, वो तो पूरा मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है उस पर्याय में, उसकी बात नहीं है। इसलिए यहां भाव वेद और द्रव्य वेद की बात अलग से बताई। द्रव्य स्त्री वेदी व नपुसक वेदी वस्त्रादि का त्याग करके निर्ग्रंथ लिंग धारण कर सकते हैं, ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर छेद सूत्र के साथ विरोध होता है। यानी सूत्रों के साथ विरोध होगा कि वो तो क्या होगा, स्त्री भी वस्त्र का त्याग कर कर भले बंद कोली में रहे या कहीं भी रहे, फिर वो या निर्जन वर्ण में जाके वस्त्र का त्याग करे तो हो सकतेगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कहते हैं। देवों की उत्कृष्ट आयु के बंधक स्थलचारी संयत मनुष्य, अभी संयत लिखा नहीं, तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंधक, स्थलचारी में मिथ्यादृष्टि मनुष्य लेना, और जलचारी, स्थलचारी भी लिया, स्थलचारी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि है, या स्थलचरों को लिया भाई, परंतु वहां तो हमेशा मत्स्य की बात आती है जब जब हमने पढ़ी है। इसके ज्ञापनार्थ जलचरसवा थलचरसवा ऐसा कहा है। शंका, आकाशचारी जीव देव नारकियों की उत्कृष्ट आयु को क्यों नहीं बांधते हैं? कौन रह गया आकाशचारी? हाँ बेन, ज्योत्सना बेन, आकाशचारी कौन है? पक्षी है ना सर, हाँ उसका समाधान नहीं, क्योंकि पक्षियों के, सप्तम पृथ्वी के नारकियों अथवा अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न होने की सामर्थ्य नहीं है। इन्हें सातवें नरक के नारकी में भी वो उत्पन्न नहीं हो गए सके। यदि कहा जाए विद्याधर भी तो आकाशचारी है, तो विद्याधरों को भी आकाशचारी कहो, विद्या के बल से आकाश में विचरण करते हैं, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या की सहायता के बिना जो स्वभाव से ही आकाशगमन में समर्थ है, उनकी ही खगचरत्व की प्रसिद्धि है। ख यानी आकाश, खग यानी ख में गमन यानी आकाश में गमन और उसमें चरना, खगचरत्व, उन्हीं को कहते हैं पंछियों को। ये विद्याधरों को कौन से गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है मालूम है मंजू बेन? मोक्ष तक का। हाँ, विद्या छोड़ के, वो तो विद्या लेके कोई जाने वाला नहीं। हाँ, वो तो विद्या छोटी गई ना उनकी। हाँ अच्छा, ऐसा लिखा है, क्योंकि मुनि होने पर विद्याओं का तो उपयोग करेंगे ही नहीं, वो रिद्धि है मुनियों की। रिद्धि अलग बात है और ये विद्याएं अलग बात है। विद्याओं के द्वारा वो वैसा तप, तप यानी वो जो उनके भी वो ऐसे ध्यान होते हैं ना, जैसे रावण की बात आए, बहुरूपित्व विद्या उसने हासिल की थी, तो शांतिनाथ के मंदिर में जाके वहां वो तप लगा के बैठा था, उपवास करके वो विद्या के लिए तप किया था। विशिष्ट किसी इच्छा के साथ तप किया है ना, तो वो तो रिद्धियां नहीं कहलाते। मुनियों के जो रिद्धियां प्राप्त होती है वो उनकी उसमें कोई इच्छा नहीं होती है और ना ही उसका कुछ यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। सहज हो तो हो मगर उसके लिए कुछ उसका प्रयत्न नहीं होता है। दर्शनोपयोग में वर्तमान जीवों के उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, किंतु ज्ञानोपयोग में वर्तमान जीवों के ही उसका बंध होता है, यह जतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया है। वहां लिखा था ना साकार और जागृत। सोए हुए जीवों के उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, यह बतलाने के लिए जागार पद का प्रयोग किया है। जिस प्रकार शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां उत्कृष्ट संकलेश से बनती है, वैसे आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विशुद्धि अथवा उत्कृष्ट संकलेश से नहीं बनती। उत्कृष्ट संकलेश उत्कृष्ट विशुद्धि में तो आयु कर्म का बंध ही नहीं होता। यह जतलाने के लिए तप पावग संकलिष्ठस्य वा तप पावग विशुद्धिस्य वा ऐसा कहा है। तप पावग ने तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग्य ने आयु के प्रायोग्य, आयु के योग्य जो वहां के विशिष्ट संकलेश या विशुद्धि होगी। देवों के लिए विशुद्धि कहेंगे, नारकियों के लिए संकलेश कहेंगे। उत्कृष्ट आबाधा के बिना उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती, वो स्थिति हमको लंबी में चाहिए ना, यह ज्ञापन कराने के लिए उक्कसियाय आबाहाय ऐसा कहा है। चूंकि द्वितीयादिक समयों में आबाधा उत्कृष्ट होती नहीं है, अभी दूसरा समय आयुबंध का दूसरा समय है, अभी आबाधा एक समय कम हो गई ना उसकी, तो पहले ही समय में आबाधा उत्कृष्ट होगी, इसलिए पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबाधा करके देवों व नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाले जीव के बंध के प्रथम समय में ही उत्कृष्ट आयु वेदना होती है ऐसा कहा है। अब कहते हैं तव वदिरितम अनुकस्सा, ये तो उत्कृष्ट किसके होती है उसकी बात बताई, अब अनुत्कृष्ट किसके होती है, तो कहते हैं उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है। वो तो आयु का काल वो पड़ा है ना अंदर, हमने जो आबाधा प्लस उसकी स्थिति बांधी उतना ले लिया, तो उतने काल तक वो पड़ा है अंदर, सत्ता उतनी काल की है, तो उसको वहां लिया। बोले आबादा काल में निषेक रचना नहीं है, परंतु वो आयु का काल उतना पड़ा है वहां पर। ये अनुत्कृष्ट वेदना होती है, ये कल ही पढ़ना पड़ेगा क्या? अभी आज लेट शुरू किया था, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, उससे अर्थात उत्कृष्ट से विपरीत आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना होती है। यह अनुत्कृष्ट काल वेदना असंख्यात भेद स्वरूप है। अनंत भेद क्यों नहीं है? देखो, अधिक से अधिक 33 सागर है, कम से कम आयु अंतर्मूर्त तो होगी ही, तो उसके 33 सागर में समय कितने हैं? अनंत नहीं है, असंख्यात है। सागरों का प्रमाण कितना है? असंख्यात समयों का है। इसलिए अनुत्कृष्ट भी भेद कहेंगे, 33 सागर में एक समय कम, दो समय कम, तीन समय कम, इस तरह से घटते घटते का, हजार वर्ष की कोई है, हमारे जैसे 50 साल की होगी या अन्य भी कोई होगी, तो भी वो सारे भेद कितने हैं? असंख्यात भेद है। इसीलिए उसके स्वामी भी असंख्य प्रकार है। यथा पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबादा करके 33 सागरोपम प्रमाण आयु को जिसने बांधा है, वह काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना का स्वामी है। जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है, वह अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। अनुत्कृष्टों में भी उत्कृष्ट होगा, है ना? जिसने दो समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है, वो बांधा हुआ है, वह भी अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। जिसने तीन समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है, वह भी अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। इस प्रकार असंख्यात भाग हानि होकर तब तक जाती है, ये एक एक समय कम कम कम, वो सब उसका असंख्यात भाग ही कम हुआ है ना, असंख्यात भाग हो हानि कहेंगे, जब तक जगन्य परिता संख्यात से उत्कृष्ट आयु स्थिति को खंडित करने पर उसमें से एक खंड प्रमाण हानि नहीं हो जाती, तही हुआ है। यानी असंख्यात भाग कब तक कहेंगे? जब तक असंख्यात से भाग देकर जो संख्या थी उसकी होगी तब तक। तो मिनिमम असंख्यात है जघन्य परिता संख्यात, उससे भाग देकर जितना प्रमाण होगा उतने समय हम नीचे आए तब तक उसको असंख्यात भाग हानि ही कहेंगे। पश्चात उत्कृष्ट आयु को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करके उसमें से एक खंड प्रमाण हानि के हो जाने पर असंख्यात भाग हानि की समाप्ति और संख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है। संख्यात वा भाग उसका 33 सागर के बदले में हम 11 सागर ले रहे हैं, उसका संख्यात वा भाग हो गया ना। इस प्रकार संख्यात भाग हानि होकर तब तक जाती है जब तक उत्कृष्ट आयु का एक समय कम अर्ध भाग ही नहीं हो जाता। ओ, ये 11 सागर उसमें नहीं होगा संख्यात भाग। ये मिनिमम संख्यात कौन सा है? दो है, तो आधी हो जाएगी तब हम क्या कहेंगे? संख्यात भाग। पहले उत्कृष्ट संख्यात वा भाग ऐसे करते 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 देखा ना, उत्कृष्ट आयु का एक समय कम अर्ध भाग ही नहीं हो जाता, उसमें से आधा कम हो गया, कम हो गया। पुनः अभी ये कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो। प्रेरणा बेन।